ओम शांति। आप कहाँ आए हैं? कहाँ आए हम? बाबा के घर में या विद्यालय में या हॉस्पिटल में? हाँ? अच्छा, ये ईश्वर का घर है, बाबा का घर है, मतलब आपका भी घर हो गया हो, विद्यालय भी है, तो आप क्या हुए? स्टूडेंट। और हॉस्पिटल भी है तो क्या सफा होंगी आपकी? आत्मा में जो मैल लगा है ना, बुराइयों का, कमियों का, विकारों का, उसकी यहाँ सफाई होंगी, ट्रीटमेंट होंगी। कभी कभी ऑपरेशन भी करना पड़ता है ना, ट्यूमर वगैरह हो जाता है तो ऑपरेशन करना होता है। तो आप अभी अपने आप को क्या समझते हो? आप कौन हो? पवित्र आत्मा। पवित्र हो या पवित्र बन रहे हो? बन रहे हो। आप हो आत्मा। और आपके बच्चे क्या हुए? आपके बच्चे आपके क्या हुए? भाई भाई। वो भी परमात्मा के बच्चे हैं, आपके भाई, अलौकिक भाई। लौकिक में बच्चे कहेंगे, अलौकिक रिश्ता भाई भाई का। तो अभी अपने को गृहस्थी नहीं समझना है। क्या समझना है? ट्रस्टी। कि बाबा ने आपको निमित्त बनाया है बच्चों को संभालने के लिए, आप ट्रस्टी हो। तो जितना ट्रस्टी भाव रखेंगे ना, उनमें से मोह निकलता जाएगा। अभी तो बच्चों में मोह होता है ना, सबसे ज्यादा माँ बाप का बच्चों में मोह होता है, या आपस में पति पत्नी का मोह होता है। पर जब समझेंगे हम बाबा के बच्चे हैं, तो आपस में भाई बहन का या भाई भाई का संबंध हो जाता है। और ट्रस्टी समझने से फिर भारीपन नहीं लगता है, नहीं तो भारीपन लगता है, जिम्मेवारी कभी कभी भारी बना देती है। तो जब अपने आप को गॉडली स्टूडेंट समझेंगे, क्योंकि यहाँ तो दो दिन में आपको ऊपर ऊपर से समझाया गया है, अभी जिन्होंने 7 दिन का पूरा कोर्स नहीं किया है, कितनों ने नहीं किया है 7 दिन का पूरा कोर्स? तो वो अभी लक्ष्य रखना, वहां जाकर 7 दिन का कोर्स करना। और 7 दिन के कोर्स के बाद पढ़ाई पढ़ना है। स्टूडेंट को क्या होता है? पढ़ाई पढ़ना होता है ना। आपके बच्चों को स्कूल में भेजते हैं ना, घर में बैठकर तो नहीं पढ़ाते। तो इसी रीत से हमें भी ये लक्ष्य रखना है कि हमें रोज सेंटर पर या नजदीक में गीता पाठशाला हो, वहां जाना है, मुरली पढ़ना, सुनना। मुरली के टाइम जा सको तो बहुत अच्छा, नहीं तो घर में भी पीस ऑफ माइंड अवेकनिंग चैनल पर मुरली सुन सकते हैं, परंतु सेंटर पर एक दिन जरूर जाना है। जैसे दिन में हम कितनी बार खाना खाते हैं? कम से कम तीन, कम से कम, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और फिर चाय के साथ डिटोली वगैरह खा लेते हैं शाम को 4 बजे पे। तो हम कहते हैं जैसे शरीर को हम भोजन देते हैं, आत्मा को भी भोजन चाहिए ज्ञान का। इसलिए कम से कम रोज एक बार पढ़ाई पढ़नी है, जिसको हम मुरली कहते हैं, वो सुननी है। और छोड़ना है, बाबा से हमें शक्ति लेनी है योग द्वारा, ज्ञान द्वारा हम समझदार बनते हैं। अभी तक भगवान को ढूंढते रहे, अभी भगवान ने आपको ढूंढा है, कितने भाग्यशाली है। अपने को भाग्यशाली जो समझते हैं हाथ उठाओ। अच्छा, तो भगवान ने आपको ढूंढा है घर बैठे, यानी पानीपत में और जहां भी आप आए हैं, घर बैठे आपको भगवान मिल गया। तो अपने को भाग्यवान समझना है, तो भगवान से हमें शक्ति लेनी है। जितना याद करेंगे इतनी शक्ति मिलेंगे, और उससे जो हमारी बुरी आदतें हैं वो छोड़नी है। अब तक छूटी नहीं थी, अब छोड़ देनी है। मतलब जैसे भाई जी ने बताया, हम क्रोध छोड़ेंगे, मीठा बनेंगे। देखो, क्रोध सब करते हैं ना, कोई है जो क्रोध कभी नहीं करता हो? क्रोध करना अच्छा लगता है? आपका तो एक क्लास है ना, एंगर मैनेजमेंट। हाँ, तो क्रोध करने से कितना नुकसान होता है, पर छूटता नहीं था अभी तक। अभी जितनी जितनी बाबा से सहनशीलता की शक्ति लेंगे, जितना जितना रूहानी प्यार सबके लिए रखेंगे, और जितनी जितनी धीरज धारण करेंगे, तो आप देखेंगे क्रोध छूट जाता। देखो, हम अपने बच्चों को या जो स्टाफ हमारे अंदर काम करने वाला होता है ना, उसको क्या करते हैं, एक बार कहा, दो बार कहा, अभी नहीं, चल अभी हम सहन नहीं कर सकेंगे, ऐसे कहते हैं, गुस्सा करते हैं कि अभी हमारा से नहीं सहन होगा। और खुद के लिए खुद को मारते हैं कि नहीं, कि हमने एक बार सोचा है गुस्सा नहीं करना, दूसरी बार कहा है गुस्सा नहीं करना, अब हम अपने आप को तो मारते नहीं, अपने आप को तो बहाना बताते हैं कि फलाने ने ऐसे किया ना, इसलिए गुस्सा आ गया। तो हम दोष देते हैं दूसरों को और परिस्थिति को। अभी हमको क्या करना है, अपने को देखना है, अपने को सुधारना है, फिर परिस्थिति आप ही सुधर जाएंगे। तो गुस्सा है, लोभ है, मोह है, आलस्य है, अलबेलापन है, वैर है, घृणा है, ईर्ष्या है, अभिमान है, ये सब बुराई छोड़नी है। अब बुराई छोड़ेंगे तो क्या होगा, अच्छे बन जाएंगे। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है, क्या है लक्ष्य हमारा, देवता बनना, मनुष्य से देवता बनना, ये लक्ष्य है। देखो कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं तो लक्ष्य लेकर जाते हैं ना, कि हम जाकर वहां डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, कुछ न कुछ लक्ष्य लेके जाते हैं। तो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का लक्ष्य है हमें मनुष्य से देवता बनना है। कहते हैं नर जो ऐसी करनी करे नरसो नारायण बने। तो जब लक्ष्य रखेंगे तो लक्षण आ जाएंगे, देवता के लक्षण लाने हैं ना जीवन में, देवताओं के गुण धारण करेंगे। जब हम सब देवता जैसे बन जाएंगे तो क्या होगा, संसार स्वर्ग बन जाएगा। क्योंकि हम यही चाहते हैं ना कि संसार स्वर्ग बन जाए, हम स्वर्ग में जाएं। लोग कहते हैं, ये कोई मरता है ना तो कहते हैं ये स्वर्गवासी हुआ। अभी एक तरफ कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, फिर रोते हैं। इसका मतलब कि अभी बुद्धि में पक्का नहीं है कि ये स्वर्ग में गया या नहीं। स्वर्ग कहाँ है, यही सत्युग में होगा। अभी कलयुग है, कलयुग के बाद आएगा सत्युग, तो सत्युग में स्वर्ग होगा। और उसमें जाने के लिए हमें ऐसा बनना है, देवता जैसा। क्योंकि कहते हैं ना, राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार। तो राम के राज्य में सब राम जैसे थे। अभी कलयुग में हम क्या देखते हैं, सब करप्ट, ऊपर से लेकर लेकर नीचे तक जो भी है, ऑफिसर्स है, प्यून है, सब करप्ट, लाच रुश्वत लेने वाले। तो अभी हमें क्या करना है कि अपनी जो भी बुरी आदतें हैं जो हमें भी तंग करती है ना, लोभ वश खुश रहते हैं क्या, जिसको लोभ है ना, लोभी कभी संतुष्ट नहीं रहेगा, चाहिए चाहिए चाहिए। और आजकल तो देखो कितनी फैशन बढ़ती जाती है, नई नई इन्वेंशन होती रहती है। हाँ, दुनिया में सब कुछ नया नया होता रहता है, कार है, मोटर बाइक है, टेलीविजन है, सब अपग्रेड होते रहते हैं। तो जिनको लोभ होगा, कहते लोभ को थोभ नहीं, संतुष्ट नहीं। तो इसलिए हमें सब कुछ छोड़ना है जो हमको भी दुख दे रहे हैं, क्योंकि लोभी लोग हमेशा सोचते रहते हैं क्या लेवे, कब लेवे, कैसे लेवे, कहाँ से लेवे, तो उनको भगवान कैसे याद आएगा? उसको तो वस्तु और वैभव ही याद आएगा। तो बुराई को छोड़ना है, गृहस्थ व्यवहार में रहो। आपको कोई नहीं कहेंगे कि आप सेंटर में आकर रहो या सिर्फ सफेद कपड़े पहनो। तो मेन बात है हमारा मन सफेद होना चाहिए, मन में कोई मैल ना हो, किचरा ना हो, बुराइयां ना हो, कमी ना हो। दूसरा, घर गृहस्थ में रहकर हमें अपना जीवन ऐसा बनाना है कि हम सबका बैलेंस रहे। क्योंकि बैलेंस रखने से क्या होगा, हमको सबकी दुआएं मिलती रहेंगे और हम खुश रहेंगे। तो पहले तो है कि हमें शरीर को भी देखना है। इंडिया में तो लोग 3 टाइम खाना पका के खाते हैं, विदेश में तो क्या है कि लोग सेंटर पर भी रहते हैं, सेवा भी करते हैं और नौकरी भी करते हैं। तो क्या है, उनको खाना पकाने का भी टाइम नहीं मिलता है। सवेरे सीरियल या टोस्ट खा लेंगे, दिन में सैंडविच साथ में ले जाएंगे और रात को एक बार ही खाना पकाएंगे। वो भी टाइम है तो पूरा खाना पकाएंगे, नहीं तो 3 फूड होता है ना, बैक बीन्स आते हैं, उसको गरम कर लेंगे, उसमें कुछ छौंक लगा लेंगे, मसाला डाल देंगे, काम हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, खाना भी बैलेंस होना चाहिए कि उसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, मिनरल्स भी हो, विटामिन भी हो और कच्चे सलाद भी हो, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, ये सब हमको देखना है कि इस शरीर के लिए 3 टाइम खाना हो और कम से कम 6 घंटा रात को नींद करो। और हम कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स यू वेल्दी एंड वाइज, अर्थात 10 बजे सो जाओ, जैसे यहाँ करते हैं ना, 10 बजे सो जाओ 10 के पहले और सवेरे 4 बजे उठ जाओ। तो इससे क्या होगा, 4 बजे का योग सबसे श्रेष्ठ, अमृत वेला कहते हैं, ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं। उस समय हमारे जो भी साधु संत महात्मा सारे विश्व में योग करते हैं, स्पेशली ब्रह्मा कुमार कुमारियां उस समय योग करते हैं 4 से 5:15। तो उस समय क्या है, बाकी सब सोए हैं। कहते हैं भोगी की रात योगी का दिन और योगी की रात भोगी का दिन, अर्थात हम लोग हैं 10 से 4, सोते हैं, और विदेश में जो बच्चे हैं ना, स्पेशली फ्राइडे सैटरडे संडे नौकरी नहीं होती है तो वो क्या करते हैं, सारी रात डांस करते रहते हैं। एक माता हमारी ऑस्ट्रेलिया के कहती थी, मैं 4 बजे उठती हूँ योग करने और हमारे बच्चे डांस वगैरह करके 4 बजे घर आते हैं, सोते हैं। तो क्या है कि हमारी दिनचर्या हम ज्ञान में आने से, बाबा को जानने से अपनी दिनचर्या बदली करते हैं। सवेरे सोना, सवेरे उठना। तो 6-7 घंटे ठीक नींद कर लो और खाने का भी ठीक रखो, तो वो शरीर भी तंदुरुस्त रहे और आत्मा भी शक्तिशाली रहे। फिर हमें बैलेंस रखना है जीवन में, न्यारा और प्यारा, हर एक के साथ प्यार हो, सिर्फ अपने परिवार से नहीं। हम बाबा के बच्चे, सब बाबा के बच्चे, हर एक भाई बहन हो गए तो हर एक से प्यार हो, परंतु मेरापन ना हो। मेरापन गड़बड़ करेगा। जब ये होगा मेरा बच्चा है तो क्या होता है, मोह पड़ जाता है, और जहां मोह है वहां बच्चा बीमार है तो माँ बच्चे से भी ज्यादा दुखी हो जाती है ना। बच्चा बेहोश पड़ा होगा पर माँ बाप ऐसे परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, क्या करें, कैसे करें, किस डॉक्टर के पास जाए, कौन सी दवा करें, आदि आदि। मेरापन, पड़ोसी का बच्चा बीमार होगा, बेहोश होगा, ज्यादा से ज्यादा वहां जाकर पूछेंगे क्या है, कैसे है, फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा है, उसकी दवाई लो, आदि आदि। बस घर में आकर अपना काम में बिजी हो जाते हैं। तो इसलिए न्यारा भी रहो, प्यारा भी रहो, प्यार से सबकी संभाल करो, अपनी जिम्मेवारी निभाओ, क्योंकि घर गृहस्थ में रहकर देखना है कि बच्चों को खाना पीना टाइम पर मिलता है, उसकी तबीयत ठीक है, उसकी पढ़ाई ठीक है, तो प्यार से उसकी संभाल भी करो, परंतु मेरापन ना। फिर बैलेंस रखना है नम्रता और नशा, अहम ना हो, आप में ब्यूटी है, हेल्थ है, वेल्थ है, पोजीशन है, नशा उसकी, उसका अहम ना हो, क्योंकि जहां घमंड है वहां क्या करेंगे, हम दूसरों का अपमान करेंगे कि तुम तो बुद्ध हो, तुम तो जानते नहीं हो, तुम तो समझते नहीं हो, तो अहम ना हो, पर नशा हो। कौन सा नशा हो, मैं भगवान का बच्चा हूं, भगवान का स्टूडेंट हूं, भगवान मेरा साथी है, साजन है, भगवान मुझे कल स्वर्ग में ले जाएंगे, स्वर्ग के मालिक बनाएंगे। तो ये नशा भी रहे पर नम्रता अपनी विशेषता भी है ना, तो समझो ईश्वर की गिफ्ट है, देना है। और हमने देखा है कि ईश्वर की गिफ्ट होने से अपनी विशेषता में और भी विशेषता आ जाती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास कई आर्टिस्ट एक्टर्स हैं, म्यूजिशियन ड्रमर सब आते थे, तो वो अपना अनुभव सुनाते थे कि हम कितने भी अच्छे एक्टर्स थे परंतु जब ओपनिंग होता था न्यूज़पेपर वाले आकर आर्टिकल देते थे, फीडबैक देते थे, तो हम नर्वस हो जाते थे। पर अभी ज्ञान लिया, नर्वस नहीं होते। इतने तक कि एक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले ने कहा कि एक दिन एकदम फेमस गायक न्यूजीलैंड का ऑस्ट्रेलिया में था, स्टेज पर आया, कहते हैं मेरा तो गला खराब हो गया, मैं कैसे गाऊंगा आज। तो ये ब्राह्मण भाई था, उसने उसको थमाया, धीरज दी, कहा नहीं तुम कर सकते हो, कर सकते हो। वो तैयार हो गया गाने के लिए। तो खुद को तो समझो विश्वास आ जाता है, पर औरों को भी आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसलिए कहेंगे ये ईश्वर की देन है। और फिर हमें बैलेंस होना चाहिए उदारता और इकोनॉमी। आपको जो खजाना मिला है ईश्वर से, चाहे ज्ञान है, शक्तियां हैं, गुण है, उदारता से दान देते जाओ। और देने से बढ़ेगा खजाना, देने से बढ़ेगा। तो इसलिए जो भी खजाना है देते जाओ। और साथ साथ इकोनॉमी भी, समय, संकल्प, बोल, शक्ति, धन, इकोनॉमी करना। क्योंकि इस समय सब वैल्यूएबल है। देखो जितना व्यर्थ नहीं करेंगे संकल्प तो पावरफुल होगा। इसलिए व्यर्थ नहीं करो, गवाओ नहीं। टाइम, मनी, एनर्जी सब बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए उनकी संभाल करो। और जो खजाने अविनाशी हमें मिला है उस सबको देते जाओ उदारता से। फिर बैलेंस रखना है रॉयल्टी और सादगी। हम देवता बन रहे हैं, देवता हैं कितने रॉयल होते हैं, बोलना चलना सब इतना रॉयल्टी से करते हैं। आजकल के राजाएं भी देखो, क्वीन एलिजाबेथ को देखो, जो चाहे नहीं करेंगे उसको सारा पहले से प्लान बनाना पड़ेगा। थिएटर में भी जाना होगा ना, ऐसे नहीं कि मन में आया थिएटर में चलो चले, नहीं, पहले से बुकिंग करना पड़ता है बॉक्स में। और जो भाषण उनको देते हैं लिख कर उतना ही बोलना है। जरा भी एक भी शब्द ऊपर नीचे हो गया तो गड़बड़ हो गई। तो इसलिए हमारा रॉयल्टी होनी चाहिए कि बोलना भी मीठा हो, धीरे हो, सोच समझ के बोलना है, और चलना भी ऐसे नहीं फट 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 करते चले। रॉयल लोग हैं, धीरे धीरे चलते, जैसे हाथी की चाल कैसे होती है, हाथी को रॉयल कहते हैं ना। तो इसी से चलना, बोलना, खाना पीना, खाना भी आराम से बैठकर 3 टाइम 4 टाइम बैठकर खाओ, ऐसे नहीं चलते फिरते खाते जाओ, फ्रिज खोला और डाला मुंह में, नहीं। परंतु टाइम पर टेबल कुर्सी पर खाना खाना है। तो एक तरफ रॉयल, दूसरी तरफ सिंपल। देखो हमारा ब्रह्मा कुमार के अंदर का ड्रेस कितना सिंपल है। हमको सोचना नहीं पड़ता है कि आज क्या फैशन है, क्या कलर पॉपुलर है, शोकेस में घड़ी घड़ी देखना नहीं पड़ता है, या व्यक्ति आते जाते देखनी नहीं पड़ती है कि कितना कौन सा लेटेस्ट ड्रेस है और कौन सा लेटेस्ट कलर है। नहीं, हमको तो शॉप में जाना भी नहीं पड़ता। सफेद साड़ी कोई भी खरीद के ले आ सकता है, सफेद पेटीकोट, सफेद ब्लाउज कोई भी खरीद के ले आ सकता है। तो हम तो शॉप में कई सालों से गए नहीं हैं, तो हमारा टाइम बच गया, मनी बच गई, एनर्जी बच गई। दे तो सोचना पड़ता है फलाने फंक्शन में हमने क्या पहना था, इस फंक्शन में क्या पहनूं, वही लोग होंगे तो इसलिए मुझे वो ड्रेस तो नहीं पहनना चाहिए। और कई लोगों को तो फिर क्या है, यहाँ तो अपने बालों की फैशन नहीं है। परंतु विदेश में तो क्या करेंगे, जैसा भी कोई फंक्शन में जाते हैं हेयर ड्रेसर के पास जाएंगे, ब्यूटी सलून में जाएंगे, यहाँ भी ऐसे ब्यूटी सलून में जाएंगे, ब्यूटी सलून में जाते होंगे, हेयर ड्रेसर में भी। तो और यहाँ तो ये भी है कि कपड़े खरीदो नहीं, किराए पर ले लो। तो सादगी, फिर बैलेंस रखना है गंभीर और रमणीय। क्या है कि जैसे जैसे ज्ञान लेते हैं तो हम मैच्योर होते जाते हैं, गंभीरता आती है, सब हमारे निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति बढ़ती जाती है। परंतु रमणीक भी, आपका आज ही है ना यहाँ जानकी पार्क में एंटरटेनमेंट। तो रमणीकता पे हंसो, बैठो, खाओ, पियो, खेलो, तो ये भी चलता है रमणीकता। फिर बैलेंस रखना है जिम्मेवारी और निमित्त। जिम्मेवार रहना है, जो भी कार्य मिला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, वो पूरी निभानी है, आधे में नहीं छोड़ना है, ताकि हमारी जो ऊपर है उनको भरोसा रहे कि ये काम दिया है इसको ठीक हो जाएगा। चाहे बाल बच्चों की संभाल है, घर की संभाल है, जिम्मेवार रहना है। क्योंकि हमने देखा है जिनको बुरी आदत होती है शराबी, हमने कई फैमिली में सुना सारा पैसा कमाता है और शराब में पीने में या जुआरी होता है, पीने में, ड्रग्स में, जुआ खेलने में खत्म कर देता है और घर वाले बेचारे भूखे रह जाते हैं, पढ़ाई नहीं पढ़ी जाती है। हमारे पास एक एग्जाम्पल था कि वाइफ है वो मिडल ईस्ट में कहाँ जाकर कमाई करके पति को भेजती रही कि आप घर बनाना, और पति ने शराब में सब पैसा खत्म कर दिया। तो जिम्मेवार नहीं रहा, तो जिम्मेवारी भी निभानी है पर निमित्त समझ के कि बाबा के बच्चे हैं, हम निमित्त हैं, तो क्या होगा, हल्के रहेंगे। देखो हमने अपनी बड़ी दादियों को देखा, प्रकाशमणी दादी थी, यहाँ फोटो है, यहाँ हाँ, तो प्रकाशमणी दादी थी, 125 देशों की जिम्मेवार और भारत में हजारों सेंटर की जिम्मेवार, लाखों स्टूडेंट। अभी आपको 4 बच्चे होंगे तो कितनी चिंता होती है, 1-2 दुकान होती है कितनी चिंता होती है, और दादी के पास 4,000 सेंटर और कितनी गीता पाठशाला सब, पर दादी को कभी चिंता नहीं थी। सवेरे देखो हर्षित, शाम को देखो हर्षित, और रात को पथारी में जाएंगे 2 मिनट में सो जाएंगे, चिंता नहीं। तो हमने पूछा, दादी आप ऐसे कैसे हर्षित रहती है? दादी कहती है, मैं तो निमित्त भगवान कराने वाला है ना, मुझे क्या चिंता। तो ये है, जिम्मेवारी भी निभाई, निमित्त भी रही। और फिर हमें केयरफुल रहना है, कुछ भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, समय शक्ति धन बहुत वैल्यूएबल है, उसको सार्थक करना है, दान भी देना है, पात्र को देना है। क्योंकि आजकल तो ठगी करने वाले साधु भी बहुत होते हैं। क्या कहते हैं, आपका सोना जितना है लाओ हम डबल कर देंगे, और वो सोने के बदले पीतल रख के चले जाते हैं। तो ठगी करने वाले हैं, उससे हमको केयरफुल रहना है, संभालना है। आजकल तो फोन, मोबाइल फोन पर भी कहीं आपकी लॉटरी लगी है, आपका फोन नंबर दो, आपका पैन नंबर दो, कार्ड नंबर दो, हम आपको भेज देंगे पैसा और आपके बैंक से निकाल लेते हैं। तो इसलिए केयरफुल रहना है। परंतु चिंता भी नहीं हो, बेफिक्र रहना, क्योंकि जो समझते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं, उनको चिंता नहीं रहती। सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, क्यों चिंता करें? तो इसलिए चिंता नहीं रहती है। लौकिक और अलौकिक का बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि आप परिवार में रहते हो तो परिवार की जिम्मेवारी है, समाज में आना जाना फंक्शन है, ये है, बैलेंस रखना है, पर अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान रखना है। ऐसे नहीं सारा दिन घर काम में बिजी हो जाओ और फंक्शन में तो जाना ही पड़े, क्योंकि नहीं जाएंगे तो हमारे घर फंक्शन में कौन आएगा। तो इसलिए क्या होता है कि कई है वो लौकिक में तो ठीक चलते हैं, पर पढ़ाई नहीं, योग नहीं, ये नहीं होना चाहिए। पढ़ाई योग भी हो और अपना घर काम भी ठीक करें, ताकि घर वाले कंप्लेन ना करें। नहीं तो घर वाले कंप्लेन करते हैं कि सारा दिन सफेद कपड़े पहनकर चल के चल पड़ी ब्रह्मा कुमारियों के पास, ये भी कोई कंप्लेन ना करें। तो ये देखना है कि हम बैलेंस रखें और कोशिश करें कि पढ़ाई भी करें और समय मिले तो सेंटर पर सेवा भी करें, तो अपना भाग्य बनता है। जितनी सेवा करेंगे अपना भाग्य बनेगा। तो इसलिए ये सोचना है तन मन धन जितनी भी सेवा हो सके करनी है, ताकि हम भविष्य की कमाई कर सकते हैं। और यहाँ तो ऐसा है कि हमें मिलता है अविनाशी खजाना। ज्ञान लिया, जाकर ज्ञान देंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा, कोर्स कराएंगे तो अपना भी मनन मंथन चलेगा। तो इसलिए ज्ञान लेना है, देना है, परमात्मा से प्यार लेना है, औरों को प्यार देना है, अपने लिए भी स्वमान में रहना है और दूसरों को भी रिगार्ड देना है। तो जो देते हैं सामने मिलने वाला है, रिगार्ड देंगे रिगार्ड मिलेगा, प्यार देंगे प्यार मिलेगा। तो इसलिए सेवा करते रहना, जो मिला है खजाना औरों को देते रहना है, क्योंकि बाबा कहते हैं मैंने आपको दिया, अभी आपका काम है घर वालों को देना। और ऐसा अच्छा एग्जाम्पल बनना है, जैसे अभी भाई साहब ने बताया ना कि हमारी पत्नी का परिवर्तन देखकर मैं आया ज्ञान में। हमने देखा मेजोरिटी ऐसे होता है, पहले बहन जी आती है, फिर कुछ सालों के बाद धीरे 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 उनके लौकिक पति भी आते रहते हैं। तो इसलिए अपना जीवन ऐसा बनाना है कि कोई ऐसे ना कहे कि ये ब्रह्मकुमारी में जाकर ओम शांति कह के गुस्सा करते हैं। पहले तो आपके बच्चे ही कंप्लेन करेंगे, तुम ब्रह्मा कुमारी में जाते हो ना, ओम शांति बोलती हो और शांति कहाँ है। तो इसलिए हम लोगों को ऐसे अपनी चलन रखनी है जो घर वाले कोई कंप्लेन ना करे, अड़ोसी पड़ोसी कोई कंप्लेन ना करे। बाकी बोलने वाले तो बोलेंगे, बोलने वाले तो बोलेंगे, ब्रह्मा कुमारी में जाएंगे ना तो भाई बहन मनाती है, लूटती है, सब बोलते हैं। पर जब आपने देखा है कि यहाँ क्या होता है, कैसे होता है, तो फिर आप क्यों डरेंगे, ठीक है ना। अनुभवी है तो अनुभवी को कोई हिला नहीं सकता। मैं भी जब पहले पहले ज्ञान में आई तो हमारे लौकिक को भी उसके फ्रेंड्स सब कहते थे, ये ब्रह्मा कुमारी में जाती है, देवताओं को छोड़कर सीधा शिव की पूजा करती है, ये शादी नहीं करेंगे, ये अपना सब लुटा देंगे। और हमारे पिताजी के मित्र थे, बहुत शास्त्र पढ़े थे, तो हमारे पिताजी ने उनसे मुलाकात कराई। वो कहे, शास्त्रों में ये लिखा है और आपकी ब्रह्मा कुमारियां ये कहती है। मैंने कहा, जो भी कहती है, मैंने तो अनुभव किया है कि उनका जीवन अच्छा है, पवित्र है, इसलिए हमने पिताजी को कहा, आप आकर देखो, कुछ खराबी हो तो मुझे बोलना। तो उसने कहा, ठीक है, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, तुमको जो करना है करो। ओम शांति।
बहुत धन्यवाद आदरणीय अतिथि का, बहुत सुंदर बैलेंसेस हमको बताए, मोर देन 10 बैलेंसेस, मुझे लगता है 10 से ज्यादा बैलेंस दीदी ने हम सबको सुनाए। और दीदी बहुत अच्छा बता रहे थे कि मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, और उसके लिए सवेरे जल्दी उठना बहुत जरूरी है। मैं दीदी को वर्षों से देख रहे हैं, हम सभी 50 वर्षों से तो अधिक हो गए दीदी को समर्पित, और मैं समझती हूँ दीदी आप 85 प्लस एज के होंगे,
87।
और दीदी डेली 87 ईयर से 4 बजे एक दिन भी मिस नहीं दीदी का, और टाइम से रेगुलर एंड पंक्चुअल। दीदी का हर चीज में डिसिप्लिन है, आप कभी भी देखेंगे उठने का, मुरली क्लास का, अमृत वेले का, और वॉक का भी, सबका डिसिप्लिन है, पूरा टाइम स्केड्यूल है। लेकिन जहाँ डिसिप्लिन है तो फ्लेक्सिबल भी है, जैसे हमारा टाइम 10:30 से 11:30 का था, मैंने कहा दीदी थोड़ा देर भी हो सकती है, 10-15 मिनट भाई बहन आर्ट गैलरी देखने गए हैं तो चलेगा, दीदी कहते कोई बात नहीं, तो मुझे फोन कर देना मैं आ जाऊंगी। तो ये बहुत बहुत थैंक्स है दीदी, हमको इतना सुख देती हैं, सुविधा देती हैं, तो जोरदार तालियों से दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी एक भाई ने प्रश्न पूछा था कि यहाँ पर तो सभी लोग इतना मैनेज करते हैं, इतना कुछ करते हैं, क्लास में भी पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है, फिर भी सब खुश रहते हैं, और लेकिन हमारा तो खुशी का ग्राफ बड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो हम सदा खुश कैसे रहें। ये पूछते हैं कि यहाँ पे तो सब लोग बहुत खुश रहते हैं, कितना कुछ करते हैं लेकिन खुश रहते हैं, लेकिन इनका खुशी का ग्राफ ऊपर नीचे हो जाता है, ये सदा खुश कैसे रहें।
जैसे है ना, बच्चे होते हैं ना, उनकी अवस्था कैसी होती है, अप डाउन होती है ना, उसको कुछ नहीं मिलता है तो रोने लगता है, पांव पछाड़ने लगता है, ऊपर नीचे कर देता है घर को। तो आप भी तो बच्चे हो ना, यहाँ जो रहने वाले हैं ना, वो कितना सालों से ज्ञान में है, तो इतने साल ज्ञान में होने से क्या है, शक्ति मिलती है। तो इसलिए यही है ज्ञान और योग का बल जो उनको हार्ड वर्क करते भी खुश रखता है, ना सिर्फ खुश रहता है, शांति से अपना काम करते रहते हैं। हमारा एक ऑस्ट्रेलिया से रिपोर्टर आया था, एक मास यहाँ रहा हूँ। इसने कहा मैं दादियों की इंटरव्यू नहीं करूंगा, दादियां तो है ही ऊंची स्टेज पर, मैं सब यहाँ के स्टाफ को इंटरव्यू करूंगा। तो ये हर एक डिपार्टमेंट में गया, कहता है यहाँ कोई हाजिरी नहीं पूरते हैं लेकिन सब टाइम पर अपने डिपार्टमेंट में आ जाते हैं और सब शांति से काम करते हैं। किचन में देखा कोई किसी का ऑर्डर नहीं करते हैं, आवाज नहीं। कहा कि जैसे वो होता है ना मटका हम खरीदते थे तो क्या करते हैं ठोक ठोक के कि कहाँ तेरा तो नहीं है। कहता मैंने सब ठोक ठोक कर देखा, सब ठीक है यहाँ। तो क्या है कि इन्होंने ये जो भी यहाँ काम करने वाले हैं मेजोरिटी 25 साल से यहाँ ही है और कई तो 25-30-40 साल से भी यहाँ है। तो क्या है कि उनको ज्ञान योग की शक्ति है, इसलिए चेहरा खुश रहता है, हार्ड वर्क भी करते हैं। भाई लोग हैं ना, मेजोरिटी भाइयों का यहाँ काम होता है तो हार्ड वर्क भी करते हैं।
एक लास्ट क्वेश्चन और है, टाइम है दीदी आप?
हाँ हाँ।
एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ सबने तो पुण्य का खाता बहुत अर्जित कर लिया है, सब आगे बहुत निकल गए हैं और हमें फास्ट रीति से आगे निकलना है, तो जल्दी जल्दी कौन से पुण्य करें हम?
बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं, पर उसके लिए तीव्र पुरुषार्थ चाहिए, क्योंकि जरा भी केयरलेस नहीं रहना है, अलबेलापन ना हो, बहानेबाजी ना हो। क्योंकि क्या करते हैं, हम तो गृहस्थी है ना, हमको तो घर देखना पड़ता है ना, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं, सवेरे सवेरे इतना जल्दी उठ नहीं सकते क्योंकि रात को सोते देरी से हैं, ये बहानेबाजी हो जाती है। ये बहानेबाजी ना हो, अपनी दृढ़ता हो कि हमें अमृतवेला करना है, पढ़ाई करनी है, काम काज करते बाबा को याद करना है। तो कहते हैं ना कर्दाकार दे दिल यार दे, हाथ से काम करते रहो पर दिल भगवान को दो। तो हमारी कई माताएं क्या करती है, जब किचन में काम करती है तो बाबा के गीत चला देती है ताकि बाबा की याद रहे। तो काम तो करना ही है, हर प्रकार का काम, घर में भी करना है तो सेंटर पर भी मदद करनी है। तो जितना सेवा करेंगे तो पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा। घर में काम करते हैं तो वो तो कर्मों का हिसाब किताब है, परंतु घर को भी यदि बाबा का घर समझकर आप काम करेंगे ना, तो वो जैसे कि पुण्य का खाता जमा होगा। पर मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, तो फिर अपना कर्मों का हिसाब चुप्त करते हैं। तो इसलिए लास्ट बल आए हैं, फास्ट जा सकते हैं।
थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर आपने बताया कि लास्ट आई है लेकिन फास्ट जा सकते हैं अगर कुछ बातों पर अटेंशन दें, हम अमृत वेला करें और घर में निमित्त समझ कर कार्य करें, खुद को हेड ना समझें लेकिन बाबा को अपने घर का हेड बनाएं और यहाँ से एक संकल्प करके जाएं। अभी 40 मिनट अमृत वेला करना मुश्किल लगता है तो कम से कम हम 10 मिनट जरूर करें। जो कहते हैं हम 10 मिनट करेंगे वो हाथ खड़े करो।